डैनियल की पुस्तक संख्या 167 भविष्यवाणी का रहस्य खोलना। दानियल 11 के दश और उससे आगे के ऐतिहासिक और भविष्य सूपक महत्व का खुलासा।
दानियल अध्याय 11 का 40वां पद अंत के समय अर्थात 17:3-98 में आरंभ होता है, जब उत्तर का राजा दक्षिण के राजा के हाथों अपनी घातक चोट प्राप्त करता है। उस इतिहास का पूर्व रूप 347 ईसा पूर्व के वर्ष में दिखाई दिया, जब टॉलेमी ने उत्तरी राज्य पर प्रतिशोध लिया और 17:3-98 में नेपोलियनवादी फ्रांस द्वारा पोप को बंदी बनाए जाने में भी। पद 9 में दक्षिण का राजा जब मिस्र को लौट जाता है, तब पद 10 ये पहचान कराता है कि उत्तर का राजा दक्षिण के राजा के विरुद्ध प्रत्याक्रमण करेगा।
इस प्रकार दक्षिण का राजा उसके राज्य में आएगा और अपने ही देश को लौट जाएगा, परंतु उसके पुत्र उत्तेजित होंगे और शक्तिशाली सेनाओं का एक विशाल समूह इकट्ठा करेंगे और उनमें से एक निश्चय ही आएगा और उमड़ता हुआ आगे बढ़ेगा और पार निकल जाएगा। तब वो लौटकर फिर उत्तेजित होगा, यहाँ तक कि उसके दुर्ग तक पहुँचाएगा। दानियल 11:9-10।
दसवें पद की पूर्ति करने वाले इतिहास पर उरिया स्मिथ की व्याख्या पर विचार करने से पहले हम उमड़ पड़ना और आर पार निकल जाना इस अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार अनुदित किया गया हिब्रू वाक्यांश पद 40 में उमड़ पड़ना और पार हो जाना के रूप में भी अनुदित किया गया है। मूल हिब्रू में ये वही वाक्यांश है। शास्त्रों में ये केवल एक और स्थान पर मिलता है,
और वो यहूदा में होकर जाएगा।
वो उमर पड़ेगा और ऊपर से बह जाएगा, वो गर्दन तक पहुंच जाएगा और उसके पंखों का फैलाव हे इम्मानुएल तेरे देश की चौड़ाई को भर देगा। यशायार 8:8।
दानियल अध्याय 11 पद 10 और पद 40 और फिर यशाया अध्याय 8 पद 8 में वही हिब्रू वाक्यांश तीन अलग अलग तरीकों से अनुवादित किया गया है, यद्यपि उनका अर्थ एक ही है। उस वाक्यांश का अंतिम शब्द हिब्रू शब्द अबार पद 10 में पैस थ्रू, पद 40 में पैस ओवर और यशाया में गो ओवर के रूप में दर्शाया गया है। इन तीनों संदर्भों में अर्थ मूलतः एक ही है, परंतु यशाया में इन संदर्भों के बीच एक और भविष्यवाणात्मक संबंध भी है। यशाया की पुस्तक का वो पद तब पूरा हुआ जब अश्शूर के राजा ने यहूदा को जीत लिया और यरूशलेम तक आ पहुंचा, पर उसने नगर को स्वयं कभी नहीं जीता। वो गर्दन तक आ पहुंचा पर सिर को कभी नहीं जीत सका। उसी भविष्यवाणी में यशाया ये स्पष्ट करता है कि भविष्य सूचक प्रतीक के रूप में सिर क्या दर्शाता है। वो सिर को राज्य की राजधानी ठहराता है और ये भी कि राज्य का राजा भी सिर है। वो इस भविष्य सूचक सत्य के दो साक्षी प्रस्तुत करता है कि सिर एक राजा भी है और एक राज्य भी, और फिर गूढ़ रूप से ये बताता है कि यदि भविष्यवाणी का विद्यार्थी इस सत्य को स्वीकार कर समझे बिना रहे तो वो स्थापित नहीं होगा। ये गूढ़ पद उसी भविष्यवाणी का भाग है जो ये बताता है कि उत्तर का राजा उमड़कर बह निकलेगा और पार जाएगा, पर केवल गर्दन तक,
क्योंकि आराम का सिर दमिश्क है और दमिश्क का सिर रसीन है, और 65 वर्ष के भीतर एप्रैम ऐसा तोड़ दिया जाएगा कि वो फिर जाति ना रहेगा, और एप्रैम का सिर सामरिया है और सामरिया का सिर रमल्याह का पुत्र है। यदि तुम विश्वास न करोगे तो निश्चय ही स्थिर न ठहरोगे। यशाया 7:9-9।
सीरिया के राष्ट्र का सिर उसकी राजधानी दमिश्क थी और दमिश्क राजधानी का सिर रेजिन सीरिया का राजा था। इसी प्रकार इफ्रैम राष्ट्र का सिर उसकी राजधानी सामरिया थी और सामरिया राजधानी का सिर रेमलाया का पुत्र पेका सामरिया का राजा था। उसी भविष्यवाणी में अगले अध्याय में 8वें पद में असीरिया के राजा सेनाखेरिब ने यरूशलेम को घेर लिया और 8वें पद में उसके यरूशलेम को घेरने को गर्दन तक आना बताया गया है। पद 7 और 8 जो दो गवाहों के आधार पर मस्तक के भविष्य सूचक प्रतीक को प्रस्तुत करते हैं, जो राजा और राजा के देश की राजधानी दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, 65 वर्षों की उस भविष्यवाणी को दर्शाते हैं जो इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के विरुद्ध 2520 वर्षों की दोनों भविष्यवाणियों के आरंभ बिंदु की पहचान करती है। इसलिए ये एक अत्यंत जटिल पद है, क्योंकि ये दानियेल अध्याय 11 के पद 10 और 40 से जुड़ता है, जो दोनों भी एक उत्तरी राजा द्वारा एक दक्षिणी राजा पर आक्रमण किए जाने वाले संघर्षों की पहचान करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यशाया अध्याय 8 के पद 8 में उत्तर का राजा सन्नहेरेब ने दक्षिणी राजा यहूदा पर आक्रमण किया। उत्तर और दक्षिण के राजाओं की इन मुठभेड़ों को आपस में जोड़ने वाली मुख्य बातें शीर्ष और उफन्ना और पार कर जाना है। जब अध्याय 11 के शीर्षम पद में उत्तर का राजा दक्षिण के राजा के विरुद्ध प्रत्याक्रमण करता है तो वो युद्ध जीतता है, पर वो शीर्ष को छोड़ देता है, क्योंकि वो आता है और उफनता है और पार होकर निकल जाता है दक्षिण के राजा के दुर्ग तक। दसवें पद का इतिहास दक्षिण के राजा पर उत्तर के राजा की विजय को दर्शाता है, पर वो मिस्र दुर्ग अर्थात राजधानी शीर्ष में प्रवेश नहीं करता। जब दक्षिण के राजा ने पहले पद 7 और 8 में उत्तर के राजा को पराजित किया, तब उसने उत्तर के राजा के गढ़ में प्रवेश किया और विजयी हुआ और बंदियों को मिस्र वापस ले गया। उत्तर के राजा की प्रतिशोधात्मक विजय में उसने मिस्र में प्रवेश नहीं किया। इस प्रकार ये दर्शाता है कि 1989 में जब सोवियत संघ बह गया, तब रूस उसकी राजधानी इसका सिर कायम रहा। यदि तुम विश्वास नहीं करोगे तो निश्चय ही स्थापित नहीं हो सकोगे। पद 11 और 12 में दक्षिण के राजा के रूप में दर्शाया गया रूस ही सीमा प्रदेश के उस युद्ध को जीतता है जो प्राचीन काल में राफिया था और आज यूक्रेन है।
पद 10, परंतु उसके पुत्र उत्तेजित हो उठेंगे और बड़ी बड़ी सेनाओं की बहुतायत एकत्र करेंगे और एक निश्चय ही आएगा और बाढ़ की तरह बहेगा और आर पार निकल जाएगा। तब वो लौटेगा और भड़क उठेगा, यहाँ तक कि उसके गढ़ तक पहुँच जाएगा। इस पद का पहला भाग पुत्रों के बहुवचन में की बात करता है, अंतिम भाग 1 के एक वचन में सेल्यूकस कैलिनिकस के पुत्र सेल्यूकस सिराउनस और एंटियोकस मैग्नस थे। दोनों ही अपने पिता और अपने देश के पक्ष को न्यायोचित सिद्ध करने और उसका प्रतिशोध लेने के कार्य में उत्साहपूर्वक लग गए। इनमें से ज्येष्ठ सेल्यूकस पहले सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता के राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए एक बड़ी सेना जुटाई, परंतु वो शरीर और संसाधनों दोनों की दृष्टि से दुर्बल और कायर शासक था। धन के अभाव में और अपनी सेना को आज्ञाकारिता में रखने में असमर्थ, वह 2-3 वर्ष के अपयशपूर्ण शासन के बाद अपने ही 2 सेनापतियों द्वारा विष देकर मार दिया गया। उसका अधिक सक्षम भाई एंटियोकस मैग्नस तत्पश्चात राजा घोषित किया गया, जिसने सेना का भार संभालते हुए सेल्यूसिया को पुनः लिया और सीरिया को वापस प्राप्त किया। कुछ स्थानों पर संधि द्वारा और अन्य पर शस्त्र बल से अपना आधिपत्य स्थापित किया। इसके पश्चात युद्ध विराम हुआ, जिसमें दोनों पक्ष शांति की बातचीत करते रहे, फिर भी युद्ध की तैयारी करते रहे, जिसके बाद एंटियोकस लौटा और मिस्री सेनापति निकोलस को युद्ध में परास्त किया और स्वयं मिस्र पर आक्रमण करने का विचार किया। यही वो एक है जो निश्चय ही उफन कर बह निकलेगा, एक है और पार होकर निकल जाएगा। यूराया स्मिथ, डैनियल इन द रेवलेशन 253।
1985 में सोवियत संघ के पतन ने अंत का समय को चिन्हित किया और पद में बताए गए 2 पुत्र रीगन और बुश वरिष्ठ के 2 आगमार्ग चिन्हों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1798 में अंत का समय से जहां दानियेल 11 का पद 40 आरंभ होता है, रोम की व्यभिचारिणी भुलाई गई है, क्योंकि वो इजेबेल की तरह सामरिया में पीछे रह जाती है, जबकि उसका पति अहाब कर्मेल पर्वत पर इलिया को संबोधित करता है। वो छिपी हुई थी, पर पर्दे के पीछे से डोर खींच रही थी, जैसे वो प्रथम विश्वयुद्ध और द्वितीय विश्वयुद्ध में भी करती रही। दक्षिण के राजा के विरुद्ध उसका पति ही उसकी प्रतिनिधि सेना है। जब उसने 1985 में पलटवार किया तो वो उत्तर के राजा के रूप में रथ, जहाज और घुड़सवार लेकर आई।
और अंत के समय दक्षिण का राजा उस पर आक्रमण करेगा और उत्तर का राजा रथों, घुड़सवारों और बहुत से जहाजों के साथ बवंडर के समान उस पर चढ़ाएगा। वो देशों में प्रवेश करेगा और उन्हें बहा देता हुआ आगे बढ़कर पार निकल जाएगा। दानियेल 1140।
प्रतिशोध में इसका प्रतिनिधि जहाजों द्वारा दर्शाया गया है जो आर्थिक शक्ति हैं, और रथों और घोड़सवारों द्वारा जो सैन्य सामर्थ्य है। अंतिम दिनों की भविष्यवाणियों में संयुक्त राज्य प्रतिसायतियाए जो आर्थिक अर्थिया में भोजशा रहेंगी, सैन्य सामर्थ्य और आर्थिक शक्ति है, क्योंकि संयुक्त राज्य व्रतसायतियाए सैन्य सामर्थ्य और आर्थिक शक्ति है जो नीस्पा वूलों को खरीद बिक्री करने से रोकेगा, और यदि वे फिर भी ईजबेल के अधिकार के चिन्ह को स्वीकार करने से इनकार करेंगे तो उन्हें मार डाला जाएगा। पापाई सत्ता के साथ मिलकर प्रयोग में लाई गई संयुक्त राज्य व्रतसायतियाए, संयुक्त राज्य व्रतसायतियाए 1909 में सोवियत संघ के विघटन का कारण बनी, हालांकि रूस कायम रहा। दानियल अध्याय एक ए बार के पद 10 की पूर्ति जिस इतिहास में हुई थी, वही इतिहास पद 40 के दूसरे भाग के इतिहास में फिर दोहराया जाता है, जो 1989 में अंत का समय की पहचान करता है। पद 6 से 9 का इतिहास उस इतिहास को दर्शाता है जो अंत के समय तक ले गया, जिसकी पहचान पद 40 के पहले भाग में की गई है। दानियल अध्याय एकेवार के पद 5 से 10 दानियल एकेवार के पद 40 के इतिहास को पूर्णतः स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जैसा कि बहन व्हाइट ने लिखा, दानियल के 11वें अध्याय में जो बहुत सा इतिहास पूरा हो चुका है वो फिर से दोहराया जाएगा। दानियल अध्याय 11 की पहली से चौथी आयतें, अंतिम दिनों में अंत के समय पर दो सींगों वाले राष्ट्र के दूसरे राजा के रूप में कुरूश की पहचान करती हैं। अंत के समय का वो काल 1999 से था, और दूसरा राष्ट्रपति जिसका प्रतिनिधित्व कुरूश करता है एक भविष्य सूचक क्रम स्थापित करता है जो किसी भविष्यवाणी के विद्यार्थी की 1999 से के बाद के छठे राष्ट्रपति तक गिनने देता है जो सबसे धनी राष्ट्रपति होगा, और जो वैश्विकतावादी ड्रैगन शक्तियों को, चाहे वे दुनिया के वैश्विकतावादी हों या संयुक्त राज्य अमेरिका के, उकसाएगा, जगाएगा। वो भविष्य सूचक इतिहास तब बाइबल की भविष्यवाणी के 7वें राज्य यानी संयुक्त राष्ट्र के 10 राजाओं पर छलांग लगाता है, और उसके प्राथमिक तथा प्रथम राजा की पहचान करता है जिसे सिकंदर महान अर्थ पुरुषों का योद्धा द्वारा दर्शाया गया है, और उसके राज्य के अंतिम विघटन की, जब इस्लाम की 4 हवाएं मानवीय परीक्षा काल की समाप्ति पर पूरी तरह मुक्त कर दी जाती हैं। तब पद 5 से 9 तक उस इतिहास को दर्शाते हैं जिसे 573 में सिंहासन पर पोप सत्ता की स्थापना से पहले का काल निरूपित करता है, क्योंकि पहले जिस शक्ति को उत्तर का राजा बनना था उसे 3 भौगोलिक बाधाओं पर विजय पाना था, जैसा कि सेल्यूकस ने किया जो तत्पश्चात उत्तर का राजा स्थापित हुआ। इसके बाद 3.5 वर्ष तक, जिसका प्रतिनिधित्व 35 वास्तविक वर्षों से किया गया है, उत्तर के राजा ने शासन किया, जब तक कि दक्षिण का राजा उसके दुर्ग में प्रवेश कर उसे बंदी न बना ले गया। बाद में वो मिस्र में घोड़े से गिरकर मर गया। इस प्रकार ये पद उस इतिहास की पहचान करते हैं जो 1798 तक अंत के समय समाप्त हुआ। पद 10 1989 में अंत के समय के इतिहास को चिन्हित करता है, और पद 5 से 9 के साथ मिलकर यह पद पद 40 में वर्णित इतिहास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि पद 30 से 36 तक का इतिहास भी करता है। अतः पद 10 तक पंक्ति दर पंक्ति दो भविष्य सूचक रेखाएं हैं। पहली रेखा 6ठे और 7वें राज्यों के नेताओं को संबोधित करती है, हालांकि 6ठे राज्य के 6ठे और सबसे धनी राष्ट्रपति और 7वें राज्य के बीच एक अंतराल है। दूसरी पंक्ति 3 बाधाओं को हटाए जाने के इतिहास, उत्तर के राजा के शासनकाल की अवधि, इसके बाद 1798 में किसे हटाया गया, 1989 तक की अवधि, और दूसरे राष्ट्रपति को समेटती है जिसका प्रतिनिधित्व पिछली पंक्ति में साइरस द्वारा किया गया है। पद 11 और 12 इतिहास की तीसरी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पद 2 के धनी राष्ट्रपति के बाद 1989 में अंत के समय सोवियत संघ के पतन के उपरांत किसी समय घटित होती है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के रविवार कानून से पहले कहीं आती है, जैसा कि पद 16 में दर्शाया गया है। 1985 में अंत के समय के पश्चात की इतिहास धारा को पहली पंक्ति में 2016 से आरंभ होकर वैश्विकतावादियों को उकसाने वाले 6ठे और सबसे धनी राष्ट्रपति तक ले जाया जाता है। दूसरी पंक्ति में भविष्यवाणी की इतिहास धारा को 1989 तक ले जाया जाता है। 11वीं और 12वीं आयतों में राफिया सीमारेखा का युद्ध, 13वीं आयत से पहले आता है, जहां हाल ही में पराजित हुआ उत्तर का राजा अपनी सेना को पुनर्स्थापित करता है, और फिर 16वीं आयत के रविवार विधि से ठीक पहले दक्षिण के राजा को पराजित करता है। 13वीं आयत में उत्तर के राजा की प्रतिनिधि शक्ति 1989 से रविवार विधि तक राज्य करने वाले 8 राष्ट्रपतियों में से अंतिम है, अतः 13वीं आयत का घटित होना 7 में से होने वाले 8वें राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय या उसके बाद ही होना चाहिए। 11वीं और 12वीं आयतें 6ठे सबसे धनी राष्ट्रपति से ठीक पहले आरंभ होती हैं और संभवतः उसी राष्ट्रपति के निर्वाचन से ठीक पहले समाप्त होती हैं जो 7 में से होने वाला 8वां बनता है, और 13वीं से 15वीं आयतों में प्रतिनिधि युद्ध के तीसरे संघर्ष में विजयी होता है। 11वीं और 12वीं आयतों में दक्षिण के राजा का प्रत्याघात, 10वीं आयत में दक्षिण के राजा को जो पराजय सहनी पड़ी थी उसी के प्रत्युत्तर में है। 10वीं आयत 1989 में उत्तर के राजा की विजय की पहचान कराती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेटिकन के गुप्त गठबंधन के द्वारा संपन्न हुई थी। उत्तरी सेना की ये विजय परोक्ष युद्ध की पहली लड़ाई थी, जो वास्तविक उष्ण युद्ध प्राचीन काल में पूरा हुआ था वो अंतिम दिनों में एक परोक्ष युद्ध का प्रतिरूप था। अतः 11वीं और 12वीं आयत की विजय परोक्ष युद्धों की दूसरी लड़ाई में दक्षिण के राजा की विजय होगी। 10वीं से 15वीं सी आयतों में 3 लड़ाइयां हैं और वे सब प्राचीन काल में वास्तविक उष्ण युद्धों के द्वारा पूरी हुई थीं, परंतु वे अंतिम दिनों के परोक्ष युद्धों में 3 लड़ाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहली लड़ाई 1982 में अजगर के विरुद्ध पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता की गुप्त संधि के द्वारा जीती गई थी। परोक्ष युद्धों की दूसरी लड़ाई दक्षिण के राजा की नास्तिक अजगर शक्ति के द्वारा पोप और उसकी परोक्ष सेना की संधि के विरुद्ध जीती जाएगी। परोक्ष युद्धों की तीसरी लड़ाई उत्तर के राजा की परोक्ष सेना के द्वारा जीती जाएगी, जैसा कि 13वीं से 15वीं आयतों में दर्शाया गया है। भविष्यद्वाणी के अनुसार 3 उग्र विश्व युद्ध, 3 प्रॉक्सी युद्ध हैं जो 3 युद्धों से मिलकर बने हैं, और इस्लाम के 3 हायों का युद्ध भी है। इसके अतिरिक्त 1 गृह युद्ध और 1 क्रांतिकारी युद्ध भी है। प्रॉक्सी युद्धों का दूसरा युद्ध अब यूक्रेन में सीमा रेखा में चल रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व राफिया द्वारा किया गया है, जो दक्षिण के राजा और उत्तर के राजा के बीच की सीमा रेखा थी जब पद 11 और 12 इतिहास में पहली बार पूरे हुए थे। ठीक उसी समय जब यूक्रेन में प्रतिनिधि युद्धों की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है, इस्लाम के द्वारा महिमामय देश पर किए जाने वाले 3 आक्रमणों में से दूसरा भी घटित हो रहा है। तीसरे हाय का पहला आक्रमण 11 सितंबर 2001 को आया और 1,44,000 की मुहरबंदी आरंभ हुई। मुहरबंदी का समय संयुक्त राज्य अमेरिका में शीघ्र आने वाले रविवार के कानून पर समाप्त होता है, जब तीसरे हाय का इस्लाम एक बार फिर संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रहार करेगा। पहला और अंतिम प्रहार एक ही है और वे दोनों प्रकाशित वाक्य 18 के स्वर्गदूत की वाणी को चिह्नित करते हैं, जो तीसरे स्वर्गदूत की वाणी भी है, जो 7वीं तुरही का फूंका जाना भी है, जो तीसरा हाय भी है। उन दो आक्रमणों के मध्य जो 2 स्वर हैं, जो 7वीं तुरही की ध्वनि है, तीसरे हाय के इस्लाम ने 7 अक्टूबर 2023 को आधुनिक आध्यात्मिक महिमामय देश पर नहीं बल्कि प्राचीन वास्तविक महिमामय देश पर आक्रमण किया। जो युद्ध तब आरंभ था वो अब ठीक उसी क्षेत्र में घटित हो रहा है जहां पद 11 और 12 में वर्णित राफिया का युद्ध हुआ था। गाजा पट्टी यहूदा के दक्षिणी राज्य और मिस्र के बीच की सीमा रेखा है। 7 अक्टूबर 2023 अन्य पहियों के भीतर का एक पहिया है जो विद्रोह को अर्थात इब्रानी वर्णमाला के 13वें अक्षर को चिह्नित करता है, जो प्रथम और अंतिम अक्षरों के साथ मिलकर सत्य शब्द बनाता है। तीसरे हाय के इस्लाम द्वारा महिमामय देश के विरुद्ध दूसरा आक्रमण 7 अक्टूबर 2023 को हुआ और वो ठीक उसी क्षेत्र में हुआ जहां राफिया का प्राचीन युद्ध हुआ था, जो 11वें और 12वें पदों की पूर्ति में घटित हुआ। महिमामय देश पर दूसरा आक्रमण भविष्यद्वाणी संबंधी भौगोलिक प्रतीकवाद के माध्यम से प्रतिनिधि युद्धों के दूसरे युद्ध से जुड़ा हुआ है, जैसा कि यूक्रेन के युद्ध द्वारा निरूपित किया गया है। पंक्ति पर पंक्ति वर्तमान में यूक्रेन सीमांत प्रदेश में चल रहे प्रॉक्सी युद्धों की दूसरी लड़ाई में तीसरे हाय की तुरही का दूसरा स्वर 7 अक्टूबर 2023 सम्मिलित है, जो 1,44,000 के मुद्रांकन की अंतिम अवधि में पूर्ण होता है। उस मुद्रांकन के अनुभव को दानियल ने अध्याय 10 में चित्रित किया है, जब वो 21 दिनों के शोक की अवधि के पश्चात मराह दर्शन को देखता है, जो वे 3.5 दिन हैं जिनमें वे दोनों भविष्यद्वक्ता सड़क पर मृत पड़े रहे। उस दर्शन की व्याख्या इस प्रकार की गई कि वो अंत के दिनों में परमेश्वर की प्रजा पर जो बीतने वाला था उसका स्पष्टीकरण था। हिद्देकील नदी के दर्शन द्वारा प्रस्तुत मुहरबंदी का सत्य पद 11 से 15 के भविष्यवाणी संबंधी इतिहास में पूर्ण होता है। ये पद 40 का इतिहास है, जो 1989 में आरंभ होकर पद 41 और शीघ्र आने वाला रविवार का कानून तक चलता है। ये पद 2 में वर्णित छठे सबसे धनी राष्ट्रपति का इतिहास है, जिसका प्रतिनिधित्व पद 3 में उल्लिखित अलेक्जेंडर द ग्रेट के 7वें राज्य तक किया गया है, जो इतिहास 2014 में प्रतिनिधि युद्धों की दूसरी लड़ाई के आरंभ से प्रारंभ हुआ और जिसके पश्चात 2015 में सबसे धनी राष्ट्रपति ने अपना अभियान आरंभ किया, वही पद 40 का रिक्त क्षेत्र है 1989 से लेकर पद 41 के रविवार के कानून तक, और वही पद 2 में छठे सबसे धनी राष्ट्रपति से लेकर 7वें राज्य तक का रिक्त क्षेत्र भी है। यही वो इतिहास है जो 11 सितंबर 2001 को प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 की पहली आवाज से आरंभ होता है और प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 में बड़े भूकंप की घड़ी पर दूसरी आवाज के साथ समाप्त होता है। वही इतिहास का वो काल भी है जिसे यहेजकेल अध्याय 12 में चिन्हित किया है, जहां प्रत्येक दर्शन पूरा होता है। वही समय 1,44,000 के मुद्रांकन का समय है। परमेश्वर की प्रजा का पवित्रीकरण उसके वचन के द्वारा संपन्न होता है।
उन्हें अपने सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17:17।
हम इस अध्ययन को अगले लेख में जारी रखेंगे।
ये दर्शन यहेजकेल को उस समय दिया गया जब उसका मन घोर अनिष्ट की आशंकाओं से भरा हुआ था। उसने अपने पितरों की भूमि को उजाड़ पड़ा देखा, जो नगर कभी लोगों से भरा रहता था अब निर्जन था। उसकी दीवारों के भीतर हर्षोल्लास की ध्वनि और स्तुति के गीत अब सुनाई नहीं देते थे। भविष्यद्वक्ता स्वयं एक परदेश में परदेशी था, जहां असीम महत्वाकांक्षा और वाशी क्रूरता का बोलबाला था। मानवीय अत्याचार और अन्याय के जो दृश्य और समाचार उसने देखे सुने, उनसे उसका प्राण व्यथित हो उठता और वो दिन रात कड़वे शोक में विलाप करता रहा। परंतु चेबार नदी के तट पर उसके सामने प्रस्तुत हुए अद्भुत प्रतीकों ने एक ऐसी सर्वोपरि शासन करने वाली शक्ति को प्रकट किया, जो सांसारिक शासकों की शक्ति से भी अधिक महान थी। असीरिया और बाबुल के घमंडी और क्रूर राजाओं से ही भू दया और सत्य का परमेश्वर सिंहासन आरूढ़ था, जो चक्राकार जट वक्ता को भविष्यद्वक्ता को ऐसी अव्यवस्था में उलझी हुई प्रतीत होती थी। वे एक अनंत हाथ के मार्गदर्शन में थी। परमेश्वर की आत्मा, जो उसे इन चक्रों को चलाती और दिशा देती हुई प्रकट हुई, ने अव्यवस्था से सामंजस्य उत्पन्न किया। इसी प्रकार समस्त संसार इसके नियंत्रण में था। असंख्य महिमा मंडित प्राणी उसके एक आदेश पर दुष्ट मनुष्यों की शक्ति और नीति को निष्फल करने और उसके विश्वास योग्य जनों के लिए भलाई लाने को तैयार थे। इसी प्रकार जब परमेश्वर प्रिय यूहन्ना के सामने भावी युगों के लिए कलीसिया का इतिहास खोलने ही वाले थे, तो उन्होंने उसे ये प्रकट करके कि मनुष्य के पुत्र के समान एक दीपदानों के बीच चलता फिरता है, जो 7 कलीसियाओं का प्रतीक थे, उद्धारकर्ता की अपनी प्रजा के प्रति रुचि और देखभाल का आश्वासन दिया। जब यूहन्ना को कलीसिया के पृथ्वी की शक्तियों के साथ अंतिम महान संघर्ष दिखाए गए, तब उसे विश्वास योग्यों की अंतिम विजय और छुटकारा भी देखने की अनुमति मिली। उसने देखा कि कलीसिया उस पशु और उसकी मूरत के साथ घातक संघर्ष में ला खड़ी की गई है, और उस पशु की पूजा मृत्यु दंड की धमकी के साथ लागू की जा रही है। परंतु युद्ध के धुएं और कोलाहल से परे दृष्टि डालते हुए उसने सियोन पर्वत पर मेमने के साथ एक मंडली को देखा, जिनके माथों पर पशु की छाप के स्थान पर पिता का नाम लिखा हुआ था। और फिर उसने देखा कि जिन्होंने पशु और उसकी मूरत और उसकी छाप और उसके नाम की संख्या पर जय पाई थी, वे कांच के समुद्र पर खड़े हैं, और उनके पास परमेश्वर की वीणाएं हैं और वे मूसा और मेमने का गीत गा रहे हैं। ये पाठ हमारे हित के लिए है। हमें अपना विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ही ऐसा समय आने वाला है जो मनुष्यों की आत्माओं की परीक्षा लेगा। मसीह ने जैतून के पहाड़ पर उन भयावह न्यायों का वर्णन किया जो उनके दूसरे आगमन से पहले होने थे। तुम युद्धों और युद्ध की अफवाहों के विषय में सुनोगे, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, और स्थान स्थान पर अकाल, महामारी और भूकंप होंगे। ये सब पीड़ाओं का आरंभ है। यद्यपि यरूशलेम के विनाश के समय ये भविष्यवाणियां आंशिक रूप से पूरी हुई, फिर भी ये अंतिम दिनों पर अधिक प्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। हम महान और गंभीर घटनाओं की दहलीज पर खड़े हैं। भविष्यवाणी तेजी से पूरी हो रही है। प्रभु द्वार पर है। शीघ्र ही हमारे सामने ऐसा काल खुलने वाला है जो सभी जीवितों के लिए अत्यंत महत्वों का होगा। अतीत के विवाद फिर उभरेंगे, नए विवाद उठेंगे। हमारे संसार में जो दृश्य घटित होने वाले हैं उनके बारे में अभी तक स्वप्न में भी नहीं सोचा गया है। शैतान मानवीय माध्यमों से काम कर रहा है। जो लोग संविधान में परिवर्तन करने और रविवार के पालन को लागू करने वाला कानून बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ये बहुत कम एहसास है कि इसका परिणाम क्या होगा। एक संकट हमारे बिल्कुल सिर पर आ खड़ा हुआ है। परंतु इस महान संकट में परमेश्वर के दासों को अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। यशाया, यहेजकेल और यूहन्ना को दिए गए दर्शनों में हम देखते हैं कि स्वर्ग पृथ्वी पर घटित हो रही घटनाओं से कितना घनिष्ठ रूप से जुड़ा है, और जो उसके प्रति निष्ठावान है उनके लिए परमेश्वर की देखभाल कितनी महान है। संसार बिना शासक के नहीं है। आगामी घटनाओं का क्रम प्रभु के हाथ में है। स्वर्ग के महामहिम के अधीन राष्ट्रों की नियति और उसकी कलीसिया के मामले भी उसी की अपनी देखरेख में हैं। टेस्टिमोनीज खंड 5, 7-52, 7-53।